ये आकाशवाणी दिल्ली है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही हंगामे और नारेबाजी के बीच कल तक के लिए स्थगित। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली के बाजारों को किसी दूसरी जगह स्थानांतरित करने की कोई योजना नहीं है। दिल्ली नगर निगम ने खतरनाक अपशिष्ट के सुरक्षित निपटान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मौन मार्च का आयोजन किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने फिल्म तन्वी द ग्रेट को राजधानी में टैक्स फ्री करने की घोषणा की है और प्रसारण की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करने के लिए आज देश भर में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नेहा गोस्वामी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार तीसरे दिन विपक्ष के हंगामे के कारण कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्षी दल बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और अन्य मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहे थे। लोकसभा में दूसरे स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे कार्यवाही शुरू होने पर कांग्रेस, द्रमुक, समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दल अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए आसन के सामने आ गए। शोर शराबा जारी रहने पर सभापति ने सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष से सदन चलने की अपील करते हुए कहा कि देश की जनता उनके आचरण को देख रही है।
मैं पुनः कहना चाहता हूँ, सदन में तख्तियाँ लेकर आने वालों पर मुझे निर्णायक कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप जाइए, सदन में बैठिए, मुद्दों पर चर्चा करिए, प्रश्नकाल पर, हर मुद्दों पर, हर विषय पर नियम प्रक्रियाओं के तहत आपको चर्चा और संवाद करने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा।
राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति बनी रही। हंगामे के बीच ही पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने समुद्र में माल ढुलाई विधेयक 2025 को विचार और पारित करने के लिए पेश किया, लेकिन विपक्षी दलों के हंगामे के कारण चर्चा नहीं हो सकी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज लोकसभा में राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 पेश किया। श्री मांडविया ने कहा कि यह विधेयक खेलों के विकास और संवर्धन, खिलाड़ियों के लिए कल्याणकारी उपायों तथा सुशासन के बुनियादी सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित नैतिक आचरण का प्रावधान करता है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक ओलंपिक और खेल आंदोलन की नैतिकता और निष्पक्ष खेल, ओलंपिक चार्टर, पैरालंपिक चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं और स्थापित कानून मानकों को भी बढ़ावा देता है। श्री मांडविया ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य खेल संबंधी शिकायतों और खेल विवादों का एकीकृत, न्यायसंगत और प्रभावी तरीके से समाधान प्रदान करना भी है। वहीं दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक का स्वागत किया है। श्री सूद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खेलों का एक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के उसी दृष्टिकोण से मार्गदर्शन लेते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खेलों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है।
मोदी जी के नेतृत्व में स्पोर्ट्स के एक इकोसिस्टम डेवलप हुआ है। कल उसी से मार्गदर्शन लेके मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने एजुकेशन स्पोर्ट्स के संबंध में बहुत घोषणाएं की है। हम तो चाहते हैं अगला गोल्ड मेडल दिल्ली के खिलाड़ी को मिले, ऐसा इकोसिस्टम तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है।
दिल्ली विधानसभा में चले 3 दिवसीय राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आज समापन हुआ। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता की मौजूदगी में आज इस कार्यक्रम में दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, पंकज कुमार सिंह और रविंद्र इंद्राज सिंह ने भागीदारी की। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि नेवा प्रशिक्षण का समापन होना विधानसभा की पेपरलेस प्रौद्योगिकी आधारित विधायी ढांचे की ओर बढ़ने की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री गुप्ता ने बताया कि मॉनसून सत्र से पहले सभी विधायकों के लिए नेवा प्रशिक्षण केंद्र खुला रहेगा। इस पहल की सराहना करते हुए श्री सिरसा ने कहा कि दिल्ली विधानसभा ने मात्र 100 दिन में पूर्णतः पेपरलेस विधायी प्रणाली को अपनाया है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि अनुकरणीय है। श्री जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी है। गृह मंत्रालय द्वारा कल श्री धनखड़ के इस्तीफे की अधिसूचना के बाद यह प्रक्रिया शुरू हुई। सोमवार को श्री जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से पद से इस्तीफा दे दिया था। प्रारंभिक गतिविधियां पूरी होने के बाद आयोग उपराष्ट्रपति पद के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज भारतीय मजदूर संघ के 70वें स्थापना दिवस के समापन समारोह में शामिल हुई। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय मजदूर संघ ने त्याग, तपस्या और बलिदान की भावना से देश भर के मजदूरों को संगठित कर उनके अधिकारों की रक्षा की है। उन्होंने कहा कि संघ स्वदेशी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए श्रमिकों के कल्याण और सामाजिक आर्थिक न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य कर रहा है। इस कार्यक्रम में दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, दिल्ली के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा भी उपस्थित रहे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली के बाजारों को किसी दूसरी जगह स्थानांतरित करने की कोई योजना नहीं है। एक रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री ने आज दिल्ली सचिवालय में व्यापारियों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुरानी दिल्ली के बाजारों के विकास को लेकर सरकार ब्लूप्रिंट तैयार करने में जुट गई है। उन्होंने कहा कि पुरानी दिल्ली में दुकानें, छोटे गोदाम और ऑफिस के सामान की स्टोरेज के लिए दिल्ली के बाहरी इलाके में बड़े गोदाम बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापारियों की समस्याओं को सुलझाने और उन्हें भयमुक्त व्यापार करने की दिशा में सरकार ने दिल्ली ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड का भी गठन किया है। मुख्यमंत्री के अनुसार ये बोर्ड केवल नीतिगत योजनाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि प्राकृतिक आपदा, बाढ़ और आग जैसी स्थिति में व्यापारियों को राहत और मुआवजा देने पर भी विचार करेगा। अक्षित वैद्यान की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने फिल्म तन्वी द ग्रेट को राजधानी में टैक्स फ्री करने की घोषणा की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने यह जानकारी देते हुए कहा कि यह फिल्म समावेशन को लेकर एक प्रेरणादायक कहानी प्रस्तुत करती है। मुख्यमंत्री ने इसे एक भावनात्मक और प्रेरक कहानी बताते हुए कहा कि दिल्ली सरकार राष्ट्र सेवा की भावना को मजबूत करने वाली फिल्मों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर बच्चे को समान, आधुनिक और प्रेरणादायक शिक्षा का वातावरण देना है। चिराग दिल्ली स्थित सर्वोदय कन्या विद्यालय में एक कार्यक्रम के दौरान श्री सूद ने कहा कि सरकार सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बनाने के लिए स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर लैब और AI युक्त सुविधाएं प्रदान कर रही हैं। शिक्षा मंत्री ने बताया कि बच्चों के लिए विशेष स्कॉलरशिप योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। कार्यक्रम के अंत में उन्होंने विद्यालय परिसर में पौधारोपण भी किया और सभी से पर्यावरण संरक्षण की अपील की। दिल्ली नगर निगम के दक्षिणी जोन ने राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के साथ मिलकर खतरनाक अपशिष्ट के सुरक्षित निपटान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आज मौन मार्च का आयोजन किया। महापौर राजा इकबाल सिंह ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि स्वच्छ दिल्ली केवल सपना ही नहीं बल्कि नागरिकों और निगम की साझी जिम्मेदारी है। इस मार्च के दौरान NCC कैडेटों ने बैनरों के माध्यम से नागरिकों को घरेलू खतरनाक कचरे के खतरों से अवगत कराया। निगम ने सभी शहरवासियों से एक स्थायी प्रबंधन संस्कृति बनाने और सफाई कर्मचारियों की गरिमा और सुरक्षा की रक्षा करने में अपनी भूमिका निभाने की अपील भी की है। दिल्ली सरकार यमुना पर स्थित ITO बैराज का नियंत्रण अपने हाथ में लेने के लिए हरियाणा सरकार से औपचारिक अनुरोध करेगी। सरकार ने यह फैसला राजधानी में बाढ़ प्रबंधन को और सशक्त बनाने के लिए लिया है। एक रिपोर्ट।
सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण तथा जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने इस योजना को स्वीकृति दे दी है। उन्होंने कहा कि वह स्वयं इस विषय को हरियाणा सरकार के समक्ष उठाएंगे ताकि दिल्ली की सुरक्षा से कोई समझौता न हो। ITO बैराज दिल्ली के बाढ़ नियंत्रण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2023 में इसके गेटों की खराबी के कारण संकट और गहरा गया था। जल मंत्री कार्यालय ने बताया कि इन गेटों की मरम्मत की जा चुकी है, लेकिन आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित कार्रवाई के लिए दिल्ली सरकार को इसका पूर्ण नियंत्रण मिलना आवश्यक है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। भारत के विकास, शैक्षिक प्रसार और सांस्कृतिक संरक्षण में प्रसारण की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करने के लिए आज देश भर में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जा रहा है। 1927 में आज ही के दिन देश में पहला रेडियो प्रसारण इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के बॉम्बे स्टेशन से शुरू हुआ था। 8 जून 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो AIR कर दिया गया और फिर बाद में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। आकाशवाणी ने वर्षों से विविध श्रोताओं तक व्यापक पहुंच के साथ अपनी जगह पक्की की है।
स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रेडियो ने जन जन तक पहुंचने वाले एक प्रभावी साधन के रूप में अपनी जगह मजबूत की। स्वतंत्रता के बाद यह माध्यम साक्षरता, स्वास्थ्य जागरूकता और कृषि ज्ञान को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध हुआ। 1956 में प्रसारक का नाम आकाशवाणी हो गया। पिछले कुछ वर्षों में आकाशवाणी ने सोशल मीडिया हैंडल न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पॉडकास्ट सीरीज के माध्यम से डिजिटल क्षेत्र में अपनी पहुंच बढ़ाई है। इस अवसर पर प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल ने कहा कि आकाशवाणी वर्षों से शिक्षा, सूचना और मनोरंजन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
आकाशवाणी की 90 वर्ष की यह यात्रा किसी वटवृक्ष की तरह रही है, जिसकी जड़ें इतिहास में हैं और शाखाएं हमारे सपनों की तात विस्तार पा रही हैं। 90 वर्ष में आकाशवाणी ने जो कुछ रचा वह एक प्रसारण नहीं है बल्कि एक संस्कृति की तरह है। आकाशवाणी लगभग 23 भाषाओं में 182 बोलियों में प्रसारित करता है।
प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने कहा कि 90 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय धरोहर के रूप में आकाशवाणी आज भी मजबूती से आगे बढ़ रहा है।
ओवर द लास्ट 9 decades आकाशवाणी हैज बीन रीचिंग आउट टू लॉयल लिसनर्स offering information, education and healthy entertainment.
आकाशवाणी की महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने कहा कि भारतीय प्रसारण की यात्रा परिवर्तनकारी और राष्ट्र निर्माणकारी रही है।
आकाशवाणी is now available on waves OTT, a major leap towards anytime, anywhere listening. Public broadcasting must not only reflect society but also anticipate its needs.
अपनी स्थापना के बाद से आकाशवाणी ने राष्ट्र के लोगों से संवाद किया है और जनता को सूचित, शिक्षित और मनोरंजन करने तथा बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के अपने आदर्श वाक्य पर खरा उतरने का प्रयास किया है। प्रादेशिक समाचार के लिए अमन यादव।
भारत की अर्थव्यवस्था प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। 2025 में सकल घरेलू उत्पाद 6.5% और 2026 में 6.7% बढ़ने का अनुमान है। एशियाई विकास बैंक ADB द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मजबूत घरेलू मांग, सामान्य मानसून और मौद्रिक नरमी से विकास के दृष्टिकोण को बल मिल रहा है। इस महीने की शुरुआत में भारतीय उद्योग परिसंघ CII ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 6.4% से 6.7% के बीच रहने का अनुमान लगाया था, जिसे दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में इसकी स्थिति और मजबूत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकमान्य तिलक की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लिखा, लोकमान्य तिलक एक अग्रणी नेता थे जिन्होंने अटूट विश्वास के साथ भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की भावना को प्रज्वलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री मोदी ने चंद्रशेखर आजाद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लिखा कि श्री आजाद अद्वितीय वीरता और साहस के प्रतीक थे। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में श्री आजाद की भूमिका अत्यंत मूल्यवान है और यह हमारे युवाओं को साहस और दृढ़ विश्वास के साथ न्याय के पक्ष में खड़े होने के लिए प्रेरित करती है। राजधानी दिल्ली में आज सुबह तेज बारिश हुई, जिससे लोगों का उमस भरी गर्मी से हल्की राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही हंगामे और नारेबाजी के बीच कल तक के लिए स्थगित। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली के बाजारों को किसी दूसरी जगह स्थानांतरित करने की कोई योजना नहीं है। दिल्ली नगर निगम ने खतरनाक अपशिष्ट के सुरक्षित निपटान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मौन मार्च का आयोजन किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने फिल्म तन्वी द ग्रेट को राजधानी में टैक्स फ्री करने की घोषणा की है और प्रसारण की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करने के लिए आज देश भर में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।